छत्र खुआने के लिए मां से याचना की थी। मेरी मां ने कहा कि मैं तुझे पराजित कर दूं तो वो मुझे मेरा नाम सर्वाजीत रखेगी, तो मैं तेरे से शास्त्रार्थ करने आया हूं मां के आदेश से, लेकिन ये समझाना चाहता हूं कि मेरे साथ ज्यादा वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, मैं ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा पानी का जल से फुल्लम फुल भरा है, ये जो ऊपर तक भरा है ना, ऐसे मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं, तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, इसलिए तू पहले ही अपनी हारी लिख देना। परमात्मा ने कहा कि मैंने इसमें सुई क्यों डाली थी, कारण बताऊं? हां बताओ, कि मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है जैसे मैंने ये सुई डाली तो वो तेरा पानी बाहर निकल गया, मेरी सुई तेरे लोटे के तली में जाकर रुकी, स्थान बनाया इसने अपने ठीक ठिकाने और लोटे का जल बाहर निकल गया। ऐसे मेरा ज्ञान ऐसा सॉलिड है कि तेरा ज्ञान बाहर निकल जाएगा, मेरा ज्ञान तेरे हृदय में ऐसे टिक जाएगा जाकर जैसे सुई तली में टिक। सर्वानंद कहन लग्या प्रसन्न करो। अब जो ही वो बैठे वहां वार्ता होने लगी तो आसपास के वो ऐसे जुलाहे वर्ग वहां इकट्ठे हो गए, श्रोता बन गए। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है भाई, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है हमको दे बता, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के विषय में जानकारी दे और इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद लोक वेद के आधार पर कहता है ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, अजन्मा है, अनादि है, इनके क्या कौन कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा यही बताना चाहती है, वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बाचे पुराने 18, जड़ को अंधा पत्ते खवावे भूल गया सृजनहारा। ये वेद पढ़ते हैं और फिर भी पूजाएं जड़ की करते हैं, वेद को वेद की वास्तविकता से परिचित नहीं है और ब्रह्म को ये पूर्ण ब्रह्म बताते हैं, ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर बताते हैं, ब्रह्म की पूजा के लिए कहते हैं, जबकि वो ब्रह्म कहता है कि वो परमात्मा कोई और है। इसलिए वेद पढ़े पर भेद ना जाने ये बातचीत पुराना 18। अब सर्वानंद कहने लगा कि नहीं, इनकी कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने फिर वो बताया कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 को पढ़कर सुना स्वामी जी, निष्पक्ष भाव से प्रभु को साक्षी रख कर उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि ये सदाशिव जो है ये काल है, ये काल रूपी ब्रह्म ने और वहां ऊपर शिवलोक में ऊपर ब्रह्म लोक में एक गुप्त स्थान बनाया जहां से जहां पर इसने दुर्गा और काल के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की, ये उनके माता पिता हैं। अच्छा विस्तृत ज्ञान उसमें लिखा है। अब सर्वानंद जी ने वो अध्याय निकाला, संस्कृत में पढ़ा, देखा सचमुच ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन इनका दाव लगे गया क्योंकि उसमें कोई शिक्षित था नहीं, कहने लगा झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा है। फिर परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद निकाल स्वामी जी, उसमें देख के एक ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है, एक और विष्णु है, एक और शिव है और दुर्गा इनकी माता है। उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये मां मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी, ये अपनी मां है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म क्रोभाव मन मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं है, परमात्मा ने ज्यों का त्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी कर दी, शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे कोई और संस्कृत में एक आध घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने जो दुल्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद जय हो, सर्वानंद वाह, सर्वानंद वाह, सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले थे और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित हो गए। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो अशिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहेब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी मां से कहता कि मां मैं तो जाते हाथ हाथ खड़े कर दिए उसने आपके गुरुजी ने, था और लो वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे, जो तू दिखवा के डायक वो पढ़कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहेब विजयी हुए। तो मां ने कहा रे निकम्मे, तू कहता मैं जीत का, तू तो हार क्या है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा कहता है मां मेरे से धोखे से लिखा गया, नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे रात शास्त्रार्थ करते करते और ऐसे ही निद्रा में था मैं, गलती से लिखा है मां, मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूं। मां ने कहा लिखवा के ले भाई। वापिस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो कोई बात ना, कि मेरे अंगूठे की रेख घिस है फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा, उसने वैसे ही लिख लिया। अब आकर के क्या दिखाया, अपनी मां से कहा कि मां सुनाऊं, अका सुना बेटा, तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ ने सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहेब जी विजयी हुए। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो। सर्वानंद जी ने कहा मां मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापिस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया, मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है। तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा मां सुनाऊं, मां सुनाऊं, अखाओ बेटा सुना। अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए, उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटते हुए नजर आए और लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहेब विजयी हुए। अब बोल नहीं सका वो नादान प्राणी, जुबान बंद होगी। तब मां ने कहा रे बोलता क्यों ना विद्वान, तू कैसे बंद होगी तेरी जुबान। बैठ गया कलेजा पकड़ के, तब तक तो सोच रहा था तेरे से गलती होगी होगी। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा यह तेरी नादानी है, उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाकर कल्याण करा ले नादान, इस अक्षर ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान न्यारा है, वो मार्ग अलग है, वो परमात्मा न्यारा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी सीमा तक भगवान है लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माताजी मैं मुझे शर्म आती है और मेरे साथ चलिए आप, भगवान से मुझे उपदेश दिला दो। और कहा माताजी सही बात कह रहे थे सत परमात्मा, यही लिखा है पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान, लेकिन मैंने अपनी मानहीनता के कारण उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय ये अच्छी आत्माएं होती थी। इतना विद्वान होते हुए परमात्मा को स्वीकार कर लेना यह भी बहुत महानता का काम होता है। इनको पंडित कहते हैं, कहते पंडित सोए जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान पहचान ले वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। बखत पर सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, समय आने पर अपना सौदा कर ले, इस अपने ज्ञान ने पटक दे ठाके। एक तरफ वो विद्वान होता है, वो महान आत्मा होती है। सर्वानंद ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया। अब जैसे सर्वानंद कथा सुना रहा था, वो सर्वानंद जी ने जो कथा सुनाई वो परमात्मा की वास्तविकता को छुपा करके अपनी और ही कहानी सुना दी, जैसे संस्कृत में बोलता रहा, एक घंटे तक बोलता रहा, तो वहां के विषय में एक थोड़ा सा प्रकरण रह गया बीच में। उसमें ऐसे शास्त्रार्थ होते थे कि लोग प्रश्न कुछ होता था, परमात्मा उनसे प्रश्न कुछ करते थे, वो उत्तर कुछ दिया करते थे। और इसी कारण से परमेश्वर के सत्य ज्ञान को इन अज्ञानियों ने ऊपर नहीं आने दिया। कैसे होता था, जैसे सर्वानंद जी ने वो कथा सुनानी शुरू कर दी, वैसे कोई संस्कृत के 20-30-50 श्लोक सुना दिए, डटा नहीं डटा, और श्रोताओं ने ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद वाह सर्वानंद। तो यहां एक आपको उदाहरण देता हूं कैसे बात बिगड़ी रही। एक किसान का पुत्र छठी कक्षा में पढ़ा करता, छठी सातवीं कक्षा में, और अंग्रेजी उसने सीखी थी, एक दो एप्लीकेशन याद कर रखी थी, एक दो कोई ऐसे प्रस्ताव याद कर रखे थे अंग्रेजी में। अब बच्चा बचपन में अंग्रेजी बोलते ऊंची आवाज में बोला करे, सुनाया करे, और पिताजी बड़ा प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लायक गया। उस समय अंग्रेजों का प्रभाव था, अंग्रेजी बोलने वाले को उसमें विद्वान मानने लग गए थे, बड़ा शिक्षित मानने लग गए थे। तो दोनों एक बार अपने खेत में जा रहे थे बैलगाड़ी लेकर के, आगे से एक अंग्रेज आ गया अपनी कार गाड़ी में, उसने कार गाड़ी को रोककर उनसे हाथ दिया, उन्होंने संकेत समझकर गाड़ी बैलगाड़ी रोक दी। अब उस अंग्रेज ने अंग्रेजी में पूछा, मैं उस गांव में जा रहा हूं, क्या मेरा मार्ग ठीक है। अब उस पुत्र के पिता ने कहा कि बेटा यू अंग्रेज ना अंग्रेजी बोलकर हमें अपनी विद्वता की धाक जमाना चाहता है, अरे तुम भी तो अंग्रेजी जाने सुना दे इसके भी, आज इस अंग्रेज ने सुना दे कि हम भी जानते अंग्रेजी, कहीं तू ही तू ना जानता। तो लड़के ने छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सुना दिया, सिक लीव सुना दी, टू दी हेडमास्टर आई बैग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई एम इल टूडे, प्लीज ग्रांट मी टूडे लीव, योर फेथफुली सो एंड सो। अब उस अंग्रेज ने माथे में हाथ मारा, निकम्मे तो पूछ रहा हूं मैं, गांव का रास्ता बता सुना रहा सिक लीव, अठा के कार चल पड़ा। तो पिता ने कमर थपथपाई, वाह बेटा तने आज मेरी इज्जत रख दी, अंग्रेज भगा दिया अंग्रेजी में। तो कहता है बेटा कि पिताजी अभी तो माय बेस्ट फ्रेंड और याद था, कार छोड़ के भाग जाता थे सुन लेता थे, अभी क्या था। तो ऐसे इन्होंने परमात्मा प्रसन्न कुछ करते थे ये सुनाया करते सीख ली। और यही आज पूछ लो किसी से आप, जैसे गीता जी क्या बताना चाहती है, वो जो कि तो जब भी हार जाएंगे ना फिर संस्कृत शुरू कर देंगे। लेकिन अब हम इनके संस्कृत और हिंदी दोनों से परिचित हो गए, हमारा बच्चा भी इनकी काबू में नहीं आएगा जिसने ये सत्संग सुन रखे है। तो यही कारण रहा कि अभी तक ये बात बिगड़ी रही है, जिस शास्त्रार्थ ने ये काम बिगाड़ रखा था अब उसका दृष्टिकोण बदल दिया। अब उसका तरीका है कि जो भी शास्त्रार्थ करना चाहता है अपना लिखित लेख समाज में भेजो और उधर से उसका उत्तर पाओ, क्योंकि फैसला तो आप लोगों ने शास्त्रों के माध्यम से होना है। उनके प्रश्न नंबर शुद्ध ग्रंथों के सारी वाणी उसमें लिखे जाते हैं। तो अब वो समय आ गया कि शिक्षित लोग इसका फैसला स्वयं करेंगे। दो से फैसला नहीं हो सकता, वो तो आप अपने तुक्के मारते रहे। तो इस प्रकार ये कहानी बिगड़ी रही जो कि अब सेट होगी। अब ये कलयुग जब आया है तो परमात्मा ने कहा था कि मैं अब अपना संत भेज करके अपने प्यारी आत्माओं को या स्वयं आऊंगा या अपने बच्चों को भेजूंगा जो तेरे काल के जाल ने पर्दाफाश करेंगे। पुण्यात्माओं, अगर अब ये समय इस समय और ये सत्वक्ति ज्ञान प्रारंभ नहीं होगा, ये होगा क्योंकि परमात्मा ने 600 साल पहले अपने कबीर सागर में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा ये कि पूरे संसार में, पूरे ही संसार में कबीर साहिब की ही भक्ति होगी, दूसरा मार्ग नहीं रहेगा। अब वो शुरुआत है, अब ये विस्फोट हो गया है। अब इस ज्ञान के आधार से आपको परमात्मा, इस नाम के आधार से परमात्मा आपको वो सुख देगा जो आप केवल सुना सुना करते। हम सुना करते थे लेकिन प्राप्त नहीं होता था, हम करते भी थे साधनाएं, हमें कुछ नहीं मिलता था। अब वो कलयुग आ गया है, परमात्मा को पता था कि कलयुग में ये पूजाएं करेंगे और शास्त्र विरुद्ध करेंगे, इनसे कोई इनको लाभ होगा नहीं, और फिर ये मेरे संत मेरे दास के पास आएंगे, यहां आते इनको वो सुख होंगे, ये सोचते रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबाएंगे, फिर ये मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे भगवान कौन तथा कैसा है, भगवान क्या करता है, परमात्मा क्या लाभ देता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। फिर सभी सदग्रंथ गवाह दे रहे हैं, सभी सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, पवित्र चारों वेद कबीर परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत सवर ज्योति रत धामा असी। वो परमात्मा कबीर है, उसका वो अंगारी माने पापों का विनाशक शत्रु है, बंधनों का शत्रु बंभारी है, सतलोक में रहता है, उसका तेजो में शरीर है। अग्नि तनुरसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में लिखा है कि उसी गसी कबीर अंगारी असी बंभारी अवसुरसी और रत धामा स्वर ज्योति रत धामा असी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5:1 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है अग्नि तनुरसी परमात्मा सह शरीर है। अध्याय 5 के मंत्र 1 में लिखा है कि अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। 2 बार ठोक के लिखा है कि भगवान सह शरीर है, परमेश्वर सह शरीर है और उस सर्व पालन करता सतपुरुष का सत शरीर है वो। लेकिन 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र नंबर 8 में लिखा है कि वो कबीर परमात्मा का शरीर ऐसनाविरम अकायम, ये 5 तत्वों से बना हुआ नाड़ी के जोड़ जुगाड़ वाला शरीर नहीं है। एक तो मिट्टी की मूर्ति होती है, एक चांदी की होती है, एक सोने की होती है। तो उस परमेश्वर का जो शरीर था, शरीर है, वो अपने अपने वाले मटेरियल का नहीं है, है तो अपने ही जैसा। और पवित्र बाइबल ने लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ में कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, इति सिद्धम के परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है। पवित्र कुरान शरीफ का प्रमाण देते हैं कि कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52-59 में कि वो कबीर परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा और वो अपने अनुयायियों के, अपने उपासकों के गुनाहों को क्षमा करता है, वही पूजा के योग्य है। उसके विषय में किसी तत्वदर्शी यानी बाखबर संत से पूछो, पवित्र कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह भी अपनी अल्पज्ञता जता रहा है। और ये प्रमाण पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, अपने जैसे बनाए, और सात दिन में सृष्टि रच के सातवें दिन तख्त पर जा बैठा। जिस जो सातवें दिन तख्त पर जा बैठा वो परमात्मा कबीर है और वो सह शरीर है, मनुष्य सदृश है। तो दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा जिसने सर्व सृष्टि की रचना की और सात दिन में की, जो तख्त पर बैठा विराजमान है, वो मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है। यही पवित्र वेद ने प्रमाण कर दिया, पवित्र वेदों ने प्रमाण कर दिया कि वो कबीर परमात्मा है और वो सह शरीर है। जब वो वही स्वयं यहां आता है, आप ऋग्वेद के विषय में चारों वेदों का एक सारांश हमने बनाया है, वो पुस्तक आपके पास पहुंचेगी। आप तो आप फिर मिलाना इन महापुरुषों के द्वारा किए हुए अनुवादों को, महर्षि दानंद जी के या किसी और वो पंडित वो शर्मा जी है उनसे और भी किसी का मिलाकर देखना, आपको उन अनुवादों को पढ़ करके और इस दास के द्वारा रचे हुए अनुवादों को पढ़ोगे, आप छोड़ नहीं सकते। एक दोहे को पढ़ने लगे तो सारे को पढ़कर छोड़ोगे, ऐसा इतना प्यारा उसमें व्याख्या है। और इनको ज्ञान था ही नहीं, उवा वाई कर दी, उलट सुलट कर दिया, कहीं कीट कहीं का रूड़ा ला के अपना पीछा छुटाएगी। जैसे गीता जी में अनुतम शब्द लिखा है सातवें अध्याय के 18वें श्लोक में, और इन्होंने अनुतम का अति उत्तम लिख दिया और उसके आधार पर उन्होंने डिक्शनरियां भी चेंज कर डाली, क्योंकि इस भाषा पहले बनी भाषा से व्याकरण इन्होंने निकाली और फिर उसके साथ साथ उन्होंने अपने शब्द कोश भाषा से बनाए। इन्होंने जैसा समझा उनको उलट सुलट समझा तो उलट उलट पुलट उसके अक्षर भी बदल दिए। श्याम के समय दिखाएंगे आपको, अभी तो दिखाना संभव नहीं है, कि हिंदी की एक उसमें शब्द कोश में अनुतम शब्द का अर्थ लिखा है निकृष्ट, और फिर निकृष्ट का अर्थ उसी शब्द कोश में लिखा है अधम, नीच, घटिया, और उधर से अनुत्तम का अर्थ निष्कृष्ट भी लिखा है और अति उत्तम भी लिखा है। गुड का अर्थ बैड कभी नहीं हो सकता, किसी भाषा में बोल के लिख लो, बेकूफ बनाने वाली बात है। तो यही विचार करना हमने, फिर संस्कृत भाषा का संस्कृत के शब्दकोश वाले ने क्या किया है कि अनुत्तम शब्द को अति उत्तम लिखा और उसकी चार लाइन चल के अनुदार शब्द का अर्थ लिखा है, उसमें अनुदार माने अनुत्तम लिख दिया। तेरा वहां वहां कहां से फिर वहां पकड़े गए, फिर ये छुपाते 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 भी फिर भी नहीं इस सच्चाई को छुपा, अनुदार माने अनुत्तम लिख दिया और अभद्र लिखा व्यर्थ, तो अनुत्तम का अर्थ अभद्र हुआ, व्यर्थ हुआ, घटिया हुआ। अब इनके इन चक्कर में पड़ गया, अभी गीता बोलने वाला भगवान अपने आप को कैसे घटिया कह रहा है, ये तो सुप्रीम है, लेकिन यही तो तत्व ज्ञान का अभाव अभी तक हमें खटक रहा है और हमें हानिकारक हो रहा है। इस प्रकार जब हम पूर्ण परमात्मा से परिचित होंगे तभी हम अपने इस तत्व ज्ञान को समझ पाएंगे। जैसे परमात्मा की परिभाषा को समझने में हमें कई प्रकार का सहयोग लेना होगा। एक तो परमात्मा के गुण हैं, जैसे अंधे न आंख दे, कोढ़ी न काया दे, बांझ को पुत्र दे, निर्धन को माया दे, रंग को राजा बना डाले, इस तरह की जो सिद्धियां होती हैं ये भी ईश्वरीय गुणों का प्रतीक होती हैं। लेकिन केवल इसी मात्र से हम प्रभु की पहचान नहीं कर सकते, संत और असंत की पहचान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम कुछ शर्त रख लेते हैं अनजान पड़े में, और वो परमात्मा अपने शरण में देनी है जिन पुण्यात्माओं को, उनकी वो शर्त भी पूरी कर देते हैं। एक समय की बात है, एक जीवा दत्ता नाम के, उनको तत्वा भी कहते हैं, दो भाई थे ब्राह्मण, और एक शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था, वो शुक्ल तीर्थ गांव में वो दोनों रहा करते थे, प्रभु के बहुत ज्यादा प्यासे थे। ये आत्मा जब से अपने भगवान से बिछड़ी है तभी से वो उसकी तलाश कर रही है। इसको कोई भी कहीं बता देता है ये भागी जाती है, कोई पहाड़ों पर बता देता है केदारनाथ के मंदिर में ये वहां भी पहुंच जाती है, कोई बताता अमरनाथ के मंदिर में भगवान मिलेगा ये वहां भी पहुंच जाती है, चाहे मरे चाहे जिए, क्योंकि इसको मालिक चाहिए, उसके बिना इसका कति गुजारा नहीं है। आत्मा को इतना पता है कि हमारा कोई ऐसे कैसा स्वामी है जो हमें सुख देता है, इसलिए उसकी तलाश में हम झाड़े वालों के पास की तरह पामिष्टों के पास कहीं किसी मंदिर के में किसी गुरुजी के पास कोई जंतर मंत्र किसी प्रकार का कोई तप व्रत आदि करके हम उसकी तलाश करें। तो उन पुण्य आत्माओं ने प्रभु की तरफ में सभी मंडलेश्वरों के पास गए तो उन्होंने देखा भी जहां भी जाते हैं जो संत बोलता है हमें वो अच्छा लगता है, दूसरे के पास जाते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है, तीसरे के पास जाते हैं वो इससे भी अच्छा लगता है, तो हमारी तो बात नहीं समझ में आ रही। और कहते हैं पूर्ण संत के बिना जीव छुटकारा नहीं हो सकता, तो पूर्ण संत की हम कैसे पहचान करें? ये मिला जुला ज्ञान सभी का एक जैसा ही लग रहा हमें, वो कहता है हम पूर्ण है, वो कहता हम पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है, तो हम इस अपूर्ण और पूर्ण की कैसे भिन्नता का ज्ञान करें? तो उन्होंने अपनी कल्पना कर ली कि हम एक सूखे बट के टहनी को, एक बड़ की सूखी टहनी और अपने आंगन में लगाएंगे, जैसे नया पौधा लगाते हैं गड्ढा बनाकर, और जिस महापुरुष के चरणामृत से ये हरी हो जाएगी ये सूखी डाली, तो हम उसे पूर्ण संत मान लेंगे, और तो हमारे ज्ञान गुण तो समझ में आता है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से जिन मंडलेश्वरों के लाखों शिष्य थे बड़े बड़े, तो उनके नाम चलते थे, उनके पास गए, प्रार्थना की हम आपका चरण चरणामृत लेना चाहते हैं, तो संत चरणामृत दे देते हैं। उस चरणामृत को लाकर के उस टहनी में डालने लगे, कुछ एक को अपने घर बुला बुला के अपना सत्संग कराते, उनका आदर सत्कार करते, भोजन कराते, चरण धोकर के उसमें डालने लगे। ये वर्षों सिलसिला चलता रहा परंतु व्यर्थ रही, वो हरी नहीं हुई वो डारी। एक दिन दोनों भाई बैठकर रोने लगे, जीवा भी और तत्वा भी अर्थात दत्ता भी कहा, कहने लगे हे भगवान, आपस में वार्ता करते हैं कि भैया ऐसे समय में जन्म हुआ, मनुष्य जन्म भी हुआ और ऐसे समय में हुआ कि पृथ्वी पर कोई संत नहीं और पूरे संत बिन मुक्ति नहीं है भगवान, ये मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ लिखा सदग्रंथों में। दोनों भाइयों ने संकल्प किया है परमेश्वर हम दासों की एक अर्ज सुनो, हमारा अब जीवन समाप्त कर दो मेरे प्रभु, हमें हमारा जीवन श्वास समाप्त कर दो प्रभु, जो शेष हमारा मानुष जीवन बचा है कभी ऐसे समय में देना मेरे दाता कोई पूर्ण संत पृथ्वी पर। ऐसा कह करके वो दोनों भाई बहुत बुरी तरह रोने लगे। पुण्यात्मा जब तड़फ बनेगी आत्मा को परमात्मा की, इसका बुरा हाल हो जाता है। अभी तक तो हमें नशा है इस काल की भांग का, ये जब उतर जाएगा जब देखना अपने कोई चीज सथाई नजर नहीं आवेगी। परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ ठिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि के मांगा भगवान ते कुछ भी तो सथाई को ना, क्या मांगो कुछ ठिर ना रहा ये देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती उस रावण के दीवान वाती, आवत संग न जात संगाती, ना तो कोई हमारे साथ आया और ना ही कोई जाएंगे जो साथ जाएगा, और क्या हुआ दरबान दे हाथी के, जो द्वार पे तूने हाथी बांध लेते थे राजा लोग अपने प्रभुता दिखाने के लिए, उस राजा के 100 हाथी तो भाई द्वार पे बंधे रहते हैं, एक हाथी का खर्चा बहुत होता है और वो उनकी समर्थता का प्रमाण होता है कि उस राजा के सामने तो भाई 100 हाथी तो वहां बंधे रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये 2 दिन के हाथी, झूठा फोकट राज और पाट पटेगा अंतरे, सतगुर लगे ना कान न से संतरे। कि राजर पाठ ये फोकट है, व्यर्थ है, अंत में तेरी बहुत विरानवाटी होगी, क्योंकि तुझे परम संत और सतगुरु नहीं मिले। ऐसे जब उन दीवा और दत्ता की दोनों की बहुत तड़फ बनी, रह रह कर रो रही हैं, खाना पीना छूट जाता है, आंखों से आंसू से कपड़े भीग जाते हैं, परमात्मा प्रगट हुए। परमेश्वर कबीर साहब उस नगरी में प्रगट हुए और वहां उनके दरवाजे के सामने ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हों, अजनबी से बनकर। अब जीवा बाहर खड़ा था, जीवा ने बाहर खड़ा देखा तो परमात्मा के दर्शन करते ही आत्मा का खिंचाव बनता है, अपने आप खिंचाव बनता है साधु को देखते ही। तो जीवा को लग गया कि जैसे ये संत कुछ विशेष कसक युक्त है, इसके चेहरे से ही कुछ मुझे आभास हो रहा है। अपने भाई दत्ता से आवाज लगाई अंदर आकर के, दत्ता एक महात्मा आया है, आपकी आज्ञा हो तो साधु को घर ले आऊं। अब दत्ता ने कहा कि जीवा रहन दे, दबी दबाई बात नहीं, ये संत नहीं रहे पृथ्वी पर, और कई दिन रोना पड़ेगा, इनके पास खक नहीं है भाई, रहने दे तू। अब जीवा कहता है आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन करता है कि संत को ले ही आऊं। तो जी दत्ता ने सोची भाई की आत्मा क्यों मैंने दुखी करी, यूं चाहता है तो भाई ठीक है ले आ, तेरी इच्छा है तो मैं क्यों मना करूं। इतने में परमात्मा वापस फिर आ जाते हैं उसी गली में। जीवा ने कहा कि महात्मा जी ये दास का मकान है, झोपड़ी है, कृपा पद रखिए। कबीर साहब अंदर चले गए, बैठना दे दिया परमात्मा को, जैसा भी घर पर उपस्थित था, एक मुड्ढा सा एक सटोल दे दिया, परमात्मा विराजमान हुए और एक तसला लाकर के, उसमें पात्र लाकर के और पैर धोए, सर्वप्रथम चरण धोए। चरण धो करके दत्ता ने कहा जीवा संतों के चरणामृत को कहीं ना डालिए गली में, पौधे में डाल देना कि कहीं भाई को याद ना रहे, इसको संकेत कर दिया। ऐसे वैसे नहीं डालते संतों के चरणामृत को, पौधे में डाल देना। अब ज्यों ही जीवा ने वो पात्र को नीचे उलेड़ा पानी को, डालते ही डालते उसमें हरी हरी कोपल फूट गई, बिल्कुल जैसे नया पौधा उगता है ऐसे पत्ते सुंदर सुंदर कोपल फूट गई। बोलो सतगुरुदेव की जय। और वहीं से आवाज लगाई कि दत्ता आजा, भगवान मिल गए, आजा प्रभु मिल गए। अब दत्ता गया, क्या बात होगी कि देख ये होगी अरी डारी। दोनों भाइयों ने जाके एक पैर पकड़ दिया और बहुत जैसे बालक रोया करें ऐसे चरणों में गिर गिर कर रो रहे हैं कि निगे प्रभु आप कहां छुपे थे, ये मालिक आप पहले क्यों नहीं आई, हमने तो सोच लिया था कि पृथ्वी पर संत नहीं रहे। परमेश्वर ने कहा कि जिसमें इस पर कोई संत नहीं होगा तो आग लग जाएगी इस पृथ्वी पर। हम गुप्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जीवा यहां पर रहना पड़ता है, हमें किसी ना किसी कोने में हम किसी ना किसी रूप में रहते हैं। दूसरी बात है हमें कोई पहचान पावे ना पावे, फिर भी हम अपना कुछ ना कुछ ज्ञान मालिक का अपना ही विषय में अपना स्थान बनाए रखते हैं। यदि मैं पहले आ जाता, आतो मैं पहले भी जाता, लेकिन तुम्हारा काम बिगड़ जाता। कैसे पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ग्रहण करनी हमने इन कथाओं से। उपदेश लेने से पहले आपने जो छानबीन करनी है गुरुदेव के विषय में कर लीजिए। उपदेश लेने के बाद अगर आपके मन में उथल पुथल होती है कि संत पूर्ण नहीं है, कहीं ऐसा ना हो, वैसा नहीं है, तो आपकी आस्था हीन हो जाने से आपका नाम समाप्त हो जाता है। ये तो परमात्मा ने हमें एक ऑप्शन दी है, आपको कलयुग के अंदर पता था उसको कि ये बहुत काम बिगाड़ रखा काल ने, शीघ्र से इनको विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 नकली दुकानों पर जाने के बाद प्राणी 10वीं को भी नहीं स्वीकार करता शीघ्र। कहते हैं दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूक फूक कर पीता है। तो इस 10वीं दुकान पर जब प्राणी आएगा तो उसकी यही स्थिति हो चुकी होती है। वो सब जगह जा चुका होता है, सैकड़ों ना जाने कितने संत और कथाओं को सुनकर वो बिल्कुल जो है ना बहरे कान हो चुके होते हैं। फिर भी परमात्मा ने पहला मंत्र आपको इसीलिए दिया है कि प्रथम मंत्र तक भी आप में कोई उथल पुथल होती है पुनरुपदेश लीजिए। मालिक ने इतनी दया की हमारे ऊपर कि इनका दोष नहीं बेचारों का, ये इतने भ्रमित कर दिया है गलत ज्ञान से कि बहुत देर में सेट होंगे। दूसरा नाम लेने के बाद भी अगर कोई हो जाती है उथल पुथल तो भी कंसेशन दी दाता ने। सार नाम इसीलिए इस समय पर दिया जाएगा, सार नाम प्राप्त होने के बाद अगर आपके मन में उथल पुथल होती है, संत ऐसा नहीं है, गुरुजी में कोई आपने त्रुटि आती है, तो आपका काम कति बिगड़ जाएगा। आप इस भक्ति मार्ग से बिल्कुल अपरिचित हो, ये बिजली के सा काम है। जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। हमें नादान संतों की दंत कथाओं से बिल्कुल निर्भय हुए फिरे हैं, नाम ले लिया ठीक है गुरु जी की ताम की कम किसी तरह बोल रहे हैं कुछ भी करें। एक माई आई हमारे पास भिवानी में ना वो सत्संग सुनने के लिए, तो ना यहाँ इसार में सत्संग सुनने आई, बुढ़ी आई थी। एक माई हमारी बहन थी सेवक, उसने सेविका ने उससे चर्चा की माई कहाँ से नाम ले रखा है, उन्होंने बताई माई ऐसे नाम ले रखी बेबे मना। तो हमारी बहन ने कहा कि वो सेविका ने कहा कि आपका नाम गलत है, आपका गुरु पूर्ण नहीं है, हमारे गुरु जी से उपदेश ले लो। उसने कहा बेबे मन नुबली चार ढेर डांगा ले रखा है, कोई सा तो पूर्ण होएगा, यानी चार ढेर डांगा ले रखा है कोई सा तो पूर्ण पावेगा, यानी चौथा गुरु बदल रखा है, चार पहले तीन तो पहले बना चुकी, चौथा ये बना रखा है, इनमें कोई हद पूर्ण पावेगा वे बेई और ना बदलती। तो कहने का भाव ये है कि अब हमारी सती ये वो गुरु शिष्य है, और अब हम यही बन गई कि शायद इससे भी दे लू यू ना पूरा होते यू सही, ऐसे नहीं होता ये बात है, बड़कों के खेल नहीं है। और काल यही चाहता था कि ऐसा रोल गदोल करवा दूं कि कोई समझ ना सके संत और असंत को, ज्ञान और अज्ञान को, लेकिन अब समझेंगे। अब ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है कि जैसे और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी ये तत्व ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। ये तो तोब का गोला है परमेश्वर का, तो तत्व ज्ञान है कबीर साहब की जो वास्तविक अमरवाणी है, ये तोब का गोला है, सब साफ होते चले जाएंगे, ढूंढे नहीं पाऊंगे। तारा मंडल बैठे कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुए जब सूर्य का यू सो तारों छुप जावे। इस तत्व ज्ञान का एक बार उदय होने दो, अभी तो ये प्रभात है, प्रभात में थोड़ा थोड़ा सा चांदना होता है, और जब ये सूर्य शिखर में आएगा, ये परमात्मा का ज्ञान जब पहुंचेगा जन जन तक, फिर देखना कैसा उदय होगा। ये चांद और सितारे, ये वेदों का और गीता का ज्ञान, और ये संत ये भगवान ऐसे छिप जाएंगे जैसे चांद और सितारे देखने से भी दिखाई नहीं देते, सूर्य दोपहर के समय सूर्य उदय होने के उपरांत। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं पहले भी आ जाता, और मेरे आते ही ये शर्त तुम्हारी पूर्ण भी हो जाती, लेकिन मुझे गलियों में घूमने वाले को तुम संत नहीं मानते, तुम सोचते एक मंडलेश्वर और रहता उसकी ओर ट्राई कर लेते हैं, एक और रहता उसको भी देख लेते हैं, शायद उससे भी हो जाए, तो वो इससे कुछ बड़ा नजर आता है, बड़े शस घने उसके, तो बेटा इतना भी मन में आने से, वहां तो कुछ होना जाना था नहीं, पर मेरे से चले जाते तो मेरी मेरे कृपा पात्र नहीं रहती, तुम्हारी अश्रद्धा होने से मेरे हृदय से उतर जाती, और इसी कारण से हम सतलोक से गिरे। फिर वो अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं रहती, आप गुरु भर्ता नहीं रहते, और जिस कारण से हानि हो जाती। तो यही कारण है कि आप जब यहां आए हो तो पूर्ण रूप से नाम लेने से पहले खूब सोच विचार कर लो, एक सत्संग सुनो, दो सुनो, सौ सुनो, फिर उपदेश लेना। उपदेश लेने के बाद फिर नहीं जो है ना अग्रम मग्रम मन में नहीं आनी चाहिए, ये आगे तो आपका नाम खंड है। आपको भी यही नहीं मालूम कि हम कितने सीरियस स्थान दौर से गुजर रहे हैं, कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। आप तो बालक हो, बालक ने पता ही नहीं होता, तू नाले में गिरे है, नाले में गिर गया तो मर गया, नहीं तो उसको कोई चिंता ही नहीं थी। तो अब जिसको पता लग गया वो समझदार व्यक्ति है, उसको बार बार आगाह करता है, वहां से पकड़ पकड़ कर वापस लाता है। तो अब परमात्मा ने हमारे लिए एक ऐसा तरीका ढूंढा है कि हम स्वयं जानकार हो जाएं, और जब हम ज्ञान हमें ज्ञान होगा तो हम डरेंगे। जैसे बालक छोटा सा होता है वो सर्प न भी पकड़ ले उसको डर ही नहीं, और जब बच्चे को बड़ा होगा, जब उसको ज्ञान होगा कि सर्प ऐसा भयंकर प्राणी है, ये काट ले तो मर जाता है, तो फिर वही बालक जब बड़ा हो गया तो उसको कहेंगे कि सर्प आ गया, सर्प का नाम सुनते ही 10 कदम तो बिना देखे भाग जाएगा दूसरी तरफ, इतना भय मानता है। तो ज्ञान से ही उसके गुण अवगुणों से ही ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही फिर हमें उसका भय बनता है। अब आपको ऐसा ज्ञान कराएंगे कि आप स्वयं विद्वान बन जाओगे, और फिर आप स्वयं निर्णय किया करोगे। एक समय की बात है, एक नगरी में दो भाई रहते थे व्यापारी, छोटे की मृत्यु होगी, उसके दो पुत्र थे। उन पुत्रों की मां ने कहा कि बेटा तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का एक 18 वर्ष का, अपने ताऊजी के साथ तुम पार्टनरशिप कर लो। बेटा पैसा तो हमारे पास है नहीं, मेरे पास तुम्हारे पिता के समय के लाल रखे हैं, इन लालों को ले जाओ तुम्हारे ताऊजी को दे दो, कि कहीं गिरवे रखने हो तो रख लो, फिर हम छुटवा लेंगे अपने पैसे जब हमारे पास हो जाएंगे। दोनों बच्चे मां की आज्ञा से वहां ताऊजी के पास गए। उन्होंने बच्चों ने कहा कि ताऊजी मेरी मां ने ऐसे ऐसे कहा है, और ये लाल हमारे पास है, पैसा है नहीं, इनको आप रख लो, और गिरवी रखने वहां रख लेना, हमारे पास पैसे का जुगाड़ हो जाएगा तो छुटवा देंगे। ताऊजी ने देखे वो खोल के लाल वो गिठड़ी वापस पोटली बांध कर बच्चों को दे दिया, बेटा इनको चौकस रखाओ, सुरक्षित रखना, तेरी मां को कह दो सुरक्षित रख लेंगे, और मेरा व्यापार में अभी उधार बहुत चलता है विदेश में, जितना पैसा होगा हम सब सामान ले आएंगे, आके उनका फिर यहीं कहीं गिरवी रख लेंगे, बेटा बाहर नहीं ले चलते। तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि मां ये ताऊजी ने ऐसे ऐसे कहा है, और ये लाल आप रख लो, वापिस आएंगे तब ले लेंगे। मां ने कहा ठीक है बेटा, ये सुरक्षित रखे मिलेंगे, और आते ही ले लेना। और वो ताऊजी ले गया उन दोनों बच्चों को, वहां जाकर के जहां उसका व्यापार स्थल था, वहां उन बच्चों के हाथों से लालों की आदान प्रदान करवाया। एक दिन जानबूझकर लाल के स्थान पर लालड़ी दे दी उन बच्चों को, पहली बार जब तक उन्होंने लाल देखा नहीं था। तो बच्चों को कहा कि ले बेटा ये लाल ले जाओ, और उस सेठ को दे देना जिससे हम 50,000 रुपए का सामान लाए हैं, उसको कहना कि ये लाल रख लें गिरवी, आकर के हम अपना छुड़वा लेंगे। बच्चे दोनों गए सेठ जी से कहा, सेठ जी ताऊजी ने कहा ये एक लाल हमारा गिरवी रख लो, हम फिर आएंगे ना, अपना पैसा तुम्हें दे देंगे, लाल अपना ले लेंगे। अब उस सेठ ने एक पारखू बुलाया जिसको जौहरी बोलते हैं, जौहरी से कहा कि देख भाई लाल ठीक है। जौहरी ने कहा कि नहीं सेठ जी ये तो लालड़ी है, लाल नहीं है। तो सेठ ने लेकर गली में फेंक दिया, लाल तो 9 करोड़ रुपए का, लालड़ी 200 रुपए की भी कोई ना। और 10 बातें बच्चों को सुना दी कि तुम्हारा ताऊ इतना बेईमान तो नहीं था, अब उसके मन में खोट कैसे आ गया, नकली लाल हमारे को देने लग गया है, हम क्या उसको मना करते थे, इस तरह की बातें सुना दी। बच्चे मायूस से होकर के उस लाल को उठा करके ताऊ के पास आए। अब ताऊ जी से कहा, ताऊ जी वो सेठ तो बहुत निकम्मा आदमी है, अब हमारे लाल को उसने गली में फेंक दिया। एक व्यक्ति बुलाया, उसने कहा कि लाल नहीं है तो लालड़ी है। ताऊ जी हमारे बारे आपके बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा, हमसे सुना नहीं कहा। तब सेठ जी बोला, हो बेटा उनका दोष नहीं है, अरे मेरे से धोखा हो गया, लाल तो ये इधर रखा था पुत्र, ओहो ये तो बेटा सचमुच लालड़ी है, वो दिखाई दोनों सामने कर दी, ओहो बेटा ये है वो लाल, और जाओ अभी तुरंत और सेठ से कहना कि हमारे ताऊ जी ऐसे नहीं है, ये धोखा लग गया, लाल के स्थान पर लालड़ी दे दी गई। दोनों बच्चे फिर गए सेठ से, कहा सेठ जी हमारे ताऊ जी से धोखा हो गया और ये लाल दूसरी तरफ रखा था, धोखे से उन्हें लालड़ी दे दी, हमें खोल के देखा नहीं, हमारे ताऊ जी ऐसे नहीं है, अब देख ले ये लाल देख कितना सुंदर है। अब सेठ ने वही पारखू फिर बुलाया तो उस जोहरी ने कहा कि हाँ सेठ जी ये लाल है। तब वो सेठ जी कहता है, देख तुम्हारी आंखें काग गए, ये लालड़ी ये लाल देख कितना फर्क है। अब उन बच्चों को दृढ़ता के साथ ये परख होगी कि सचमुच ये इस क्वालिटी के लाल होते हैं और इस क्वालिटी की लालड़ी। अब वापस आ गए अपने घर को, ताऊ जी ने कहा जा बेटा तेरी मम्मी पर वो लाल मांग लियो, और ज्यादा उधार होगी है या किसी को गिरवी रख के और पैसे ले चलेंगे उन सेठों के दे आवेंगे। दोनों बच्चे घर पर आए, माँ ने कहा बेटो आ जाओ खाना खाओ बच्चों। माँ ने बच्चों ने कहा नहीं माँ पहले पीछे खाना खाएंगे, पहले माँ वो लाल दे और ताऊ जी के ऊपर बहुत उधार होगी है, एक लाल को रख के अपना कर्ज ढीला करेंगे। माँ ने कहा ले बेटा न्यू के ऐसे रखे थे जो कि तू सुरक्षित और ले जाओ। वो बच्चों ने वही खोल कर देख लिए, वो लाल नहीं थे लालड़ी थी, वही पटक दिए माँ के पास और कहा माँ आप तो भोली भाली हो, आपको पता नहीं माँ ये लाल नहीं है तो लालड़ी है। ताऊ जी के कहूँ हमारे को, ये तो माता 200 रुपए की भी नहीं और लाल तो 9 करोड़ का होता है। माँ बोली भाई मुझे तो पता नहीं, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचे लाल होंगे। अब दोनों बच्चे मुंह लटकाए आ रहे हैं और ताऊ जी ने पूछा बेटा लाए नहीं लाल, तो उन्होंने कहा ताऊ जी वो लाल नहीं है, मेरी माँ है ना वो बोली वाली, उसका ज्ञान तो है नहीं बेचारी का, वो तो उनको लाल समझ के रखी हुई थी, ताऊ जी वो तो लालड़ी थी लाल नहीं थे। तो ताऊ जी ने उस सेठ ने कहा बेटा ये उस दिन भी लाल नहीं थे, यदि मैं कह देता कि ये लाल नहीं है तो तुम भी नाराज होते, तेरी माँ भी नहीं कहती, मेरा धनी सिर पे नहीं रहा, हमारे लालों को भी आज लालड़ी बताया जा रहा है। आज बेटा मैंने तुम्हें इतना पारखू बना दिया, इतना स्याना बना दिया कि तुमने स्वयं निर्णय करके स्वयं पटक दिए ठाके, मुझे बुरा भला होना नहीं पड़ा। तो आज ये दास चाहता है कि ये स्वयं परमात्मा के बच्चे इस सत्संग में आकर और इस टीवी के माध्यम से सीडी के माध्यम से प्रोजेक्टर के माध्यम से लाल और लालड़ी को स्वयं देख लें और फिर स्वयं पटक दें ठाके, बार बार ना कहना पड़े, औरों को भी समझाएं। तो आज वो समय आ गया है और ये ऐसे ही जोत के जोत जगेगी और अब वो समय आ गया है जो परमात्मा का तत्वज्ञान पूरी पृथ्वी पर फैलेगा और ऐसे सुखी होंगे सतयुग जैसा एक बार फिर समय आएगा। अगर ऐसा अब नहीं हुआ, आप देख रहे हो पैसे की उसने अंधे बना दिए, बाण भाई का झगड़ा, भाई भाई के मुकदमे, एक दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, आधुनिक सुविधाओं को जुटाने के लिए ना जाने के कुकर्म कर डाले ये इंसान पैसे के लिए। फिर ऐसा नहीं होगा, फिर हम संतुष्ट होंगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊ आदि अमर अस्थान। फिर हमें यहाँ की कोई सुविधाओं की सफलता नहीं रहेगी प्राप्त करने की, कोई हमने यहाँ की कोई दौड़ धूप नहीं रहेगी, किसी की हम होड़ नहीं करेंगे, जो मालिक दे उसमें सबर करेंगे और लूटेंगे नहीं हम, लुटिया करेंगे, फिर ये जीव सुखी होगा और यहां से हमारा सतलोक गमन होगा। बोलो सतगुरुदेव की। राम नाम रटते रहो जब तक घट में परान, कबहु तो दीन दयाल के गिनक पड़गी कान। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषियों रस चोजी, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मोज। बंदे तो कर बंदगी जे चावे दीदारी, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो राम नाम मत भूल। इस झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोदी, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदी। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वारी। आए हैं सो जावेंगे राजा रंक फकीरी, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीरी। पतझड़ आवत देख कर वन रोवे वन मई, ये ऊंची डारी पात थे अब पीले हो जाई। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिल न जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है एक आवे एक जाते। परमात्मा बंदीश और कबीर परमेश्वर, हम काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं को भिन्न भिन्न प्रमाण देकर के जगाना चाहते हैं। तुम कहां बैठे हो नादानो, जरा सा विचार किया करो, थोड़ी सी समझ से काम ले लो। बस हम कौन हैं, कहां से आए थे और यहां से जाने के बाद हम कहां जाएंगे? परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि ये काल लोक है। जैसा दिन के सत्संग में पुण्यात्मा सुन रही थी कि काल ने अपने स्वार्थ व समय यहां इस झूठे लालच में डाल रखा है, उलझा रखा है। न तो ये संसार अपना है और न ही ये परिवार अपना है। क्या कहते हैं, काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। कि जब तेरी काया ही नहीं है, बाकी संपत्ति तेरी कैसी हो सके? कभी विचार नहीं करते, विचार वही करते हैं जो पुण्यात्मा परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं, उनको संत पूर्ण मिल जाते हैं। परमात्मा की पूरी कृपा जब जीव पर होती है तभी यह सद्बुद्धि प्राणी को आती है और फिर उसका अनुसरण भी तभी कर पाता है। नहीं तो ज्ञान देने वाले वक्ता बहुत, श्रोताओं की कमी नहीं, लेकिन समाज में किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं। बुराइयां ज्यों की त्यों चल रही हैं, कुरीतियां जो एक घर करती जा रही हैं, विषय विकारों में जीव दूना फंसता जा रहा है। स्रोता कोट अनंत है और वक्ता कोटि अनंत। श्रोता कोट वक्ता कोट अनंत है, ये श्रोता कोट अनंत। परमात्मा कहते हैं सुनने वालों की कोई कमी ना और ज्ञान बांचने वालों की कमी नहीं, लेकिन कोई बिरले साधु संत बिरले, उसके विषय में क्या बताया है। संत कौन होते हैं, संत क्या पहचान होती है संत की, ये पहले ही अपने सदग्रंथों में विद्यमान थी डेफिनेशन पूरे संत की, और भगवान की भी डेफिनेशन परिभाषा अपने सदग्रंथों में विद्यमान थी, लेकिन उसको समझाने वाला परमात्मा ने भेजा नहीं था। और जब परमात्मा की प्यारी आत्माएं आई थी उनको हमने स्वीकार किया नहीं, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज स्याणे नहीं थे, अक्सर ज्ञान नहीं था, भोले भाले सीधी सादी आत्माएं थी। अब पूर्ण संत की क्या पहचान है, जैसे गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 में लिखा है, पूरे संत की क्या पहचान होती है। जो संत, जिस संत के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से प्रसन्न कर, तो वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के विषय में तत्व ज्ञान कराएंगे, फिर जैसा वो कहें वैसे कर। इस उस तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में कहा है कि ये ऊपर को लटका हुआ, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ ये एक पीपल का यानी एक बहुत सुदृढ़ वृक्ष है, और इस वृक्ष के विषय में अर्थात जड़ क्या है इस वृक्ष की, तना क्या है, डार कौन है, टहनी कौन है, ये भिन्न भिन्न जो ज्ञान करा देगा वो समझो तत्वदर्शी संत है। क्या बताया? तो वो परमेश्वर स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत बनकर। उन्होंने परमेश्वर ने आकर बताया था बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर ने कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे तीनों देवा साखा है पातरूप संसारी। परमेश्वर ने अपने आप ही आना पड़ा, आप ही अपनी महिमा सुनानी पड़ी, आप ही संत बने, आप ही भगवान बने, आप ही दास बने, आप ही सतगुरु बने, जगत गुरु बने, तत्वदर्शी संत बने। क्योंकि अपने बच्चों की चिंता पिता माँ बाप को ही होती है। ये तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव